अध्याय तीन। सर्वशक्तिमान प्रभु इज़राइल के ईश्वर, हम अत्यंत दुखी और संतरस्त हैं। प्रभु ध्यान दे और दया कर, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। तू तो सदा बना रहता है और हम सदा के लिए नष्ट होते जा रहे हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु इज़राइल के ईश्वर, मृत्यु के पंजे में पड़े इसराइलियों की प्रार्थना सुन, उन लोगों के पुत्रों की जिन्होंने तेरे विरुद्ध पाप किया। उन्होंने अपने प्रभु ईश्वर की वाणी का तिरस्कार किया और इसलिए हम विपत्तियों के शिकार बने। हमारे पूर्वजों के कुकर्म भुला दे, किंतु अब अपना सामर्थ्य और अपना नाम याद कर। तू ही हमारा प्रभु ईश्वर है। प्रभु हम तेरा स्तुति गान करेंगे। तूने हमारे मन में अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न की, जिससे हम तेरे नाम की दुहाई दें। हम अपने निर्वासन के देश में तेरा स्तुति गान करेंगे, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप करने वाले अपने पूर्वजों के सब कुकर्म अपने हृदय से निकाल दिए। यदि हम आज निर्वासन के देश में, जहां तूने हमें बिखेरा है, अपमान, अभिशाप और दंडाज्ञा के पात्र हैं, तो इसका कारण ये है कि हमारे पूर्वजों ने अपने प्रभु ईश्वर का परित्याग कर दिया था। प्रज्ञा प्राप्ति का मार्ग। प्रबोधन। इज़राइल, जीवन देने वाली आज्ञाएं सुनो, कान लगाकर सच्चा ज्ञान प्राप्त करो। इज़राइल, तुम क्यों अपने शत्रुओं के देश में हो? तुम क्यों विदेश में बूढ़े हो गए हो? तुम विदेश में दुख के दिन काटते हो। तुम मृतकों द्वारा अशुद्ध बन गए हो। अधोलोक जाने वालों में तुम्हारी गिनती हो गई है। ये इसलिए हो रहा है कि तुमने प्रज्ञा का स्रोत त्याग दिया है। यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति में जीवन बिताते। ये समझ लो कि ज्ञान कहां है, सामर्थ्य कहां है, बुद्धिमानी कहां है, जिससे तुम जान जाओ कि लंबी आयु और जीवन कहां है, आंखों की ज्योति और शांति कहां है। कौन प्रज्ञा के निवास स्थान तक पहुंचा है? किसने उसके खजाने में प्रवेश किया है? राष्ट्रों के वे शासक कहाँ हैं, जो पृथ्वी के जंगली पशु अपने वश में रखते और आकाश के पक्षियों का खेल दिखाते हैं, जो चांदी और सोने का संचय करते हैं, जिस पर मनुष्य भरोसा रखते हैं? कहाँ हैं वे मनुष्य जिनकी संपत्ति अपार है? कहाँ है वे चांदी के शिल्पकार जो चांदी की ही चिंता करते और जिनकी कला कल्पनातीत है? वे सब के सब नष्ट होकर अधोलोक में उतर चुके हैं और दूसरे लोगों ने उनका स्थान ले लिया है। एक नई पीढ़ी का उदय हुआ और वो पृथ्वी पर बस गई, किंतु उसने ज्ञान का मार्ग नहीं पहचाना। उसने उसके मार्गों का अध्ययन नहीं किया और उस पर एकदम ध्यान नहीं दिया। उसके पुत्र और भी दूर भटक गए। कनान देश में प्रज्ञा की चर्चा नहीं सुनाई पड़ी और वो तेमान में भी नहीं देखी गई। हागार के पुत्र, जो पृथ्वी पर ज्ञान की खोज करते थे, मेर्रान और तेमान के व्यापारी, कथावाचक और ज्ञान के पिपासु, उनमें कोई प्रज्ञा का मार्ग नहीं जान सका। उनमें कोई प्रज्ञा के पथ याद नहीं रख सका। इज़राइल, तेरे ईश्वर का निवास कितना महान है, कितना विस्तृत है। उसके सामर्थ्य का क्षेत्र वो महान है और असीम। वो ऊंचा है और अपरिमेय। वहां प्राचीन काल में एक ऐसी जाति उत्पन्न हुई जो भीमकाय और युद्ध कुशल थी, किंतु ईश्वर ने उसे नहीं अपनाया और उसे ज्ञान का मार्ग नहीं बताया। उसका विनाश हुआ क्योंकि वो स्वयं नासमझ थी। वो अपनी मूर्खता के कारण नष्ट हो गई। कौन प्रज्ञा लाने के लिए स्वर्ग गया? किसने उसे बादलों के ऊपर से नीचे उतारा? किसने समुद्र पार कर उसका पता लगाया, किसने शुद्ध सोने से उसे खरीदा। कोई उसके यहां का मार्ग नहीं जानता, कोई उसके मार्ग की चिंता नहीं करता। प्रज्ञ ही प्रज्ञा जानता, सर्वज्ञ ही उसका मार्ग जानता है। उसने अपनी बुद्धि से उसका पता लगाया है, उसने सदा के लिए पृथ्वी की नींव डाली है और उसे जीव जंतुओं से भर दिया है। वो प्रकाश भेज देता है और वो फैल जाता है। वो उसे वापस बुलाता है और वो कांपते हुए उसकी आज्ञा मानता है। तारे अपने अपने स्थान पर आनंद पूर्वक जगमगाते रहते हैं। जब वो उन्हें बुलाता है तो वे उत्तर देते, हम प्रस्तुत हैं, और वे अपने निर्माता के लिए आनंद पूर्वक चमकते हैं। वही हमारा ईश्वर है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उसने ज्ञान के सभी मार्गों का पता लगाया है और उसे अपने सेवक याकूब को, अपने परम प्रिय इज़राइल को बता दिया है। इस पर प्रज्ञा पृथ्वी पर प्रकट हुई और उसने मनुष्यों के बीच निवास किया।